हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने 14th चैप्टर पढ़ा था और आज 15वां अध्याय हम लोग चर्चा करेंगे। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमको बताएंगे कि कैसे हम भगवान के प्रति आदर और कृतज्ञता जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अध्याय 14, जिसको चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। थ्री मोड्स ऑफ नेचर, रेस फॉर प्रोमिनेंस, एक्शंस इन द मोड्स और प्योर लाइफ। तो पहले हम लोगों ने तीन गुणों के बारे में चर्चा किया कि तीन गुण क्या होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उसके बाद ये जो गुण हैं इनमें कभी सत्वगुण हावी होता है, रजोगुण तमोगुण शांत रहते हैं, कभी रजोगुण हावी होता है, कभी तमोगुण हावी होता है। ये तीनों गुण हमेशा रहते हैं, लेकिन एक हावी हो जाता है या दो हावी होते हैं, एक नीचे रहता है। तो इस तरीके से ये प्रतिस्पर्धा होती रहती है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि गुणों के अंतर्गत व्यक्ति कर्म कैसे करता है, सत्वगुणी व्यक्ति कैसे कर्म करता है, रजोगुणी व्यक्ति कैसे कर्म करता है। जैसे कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो सत्व जो है वो सुख देता है, रजोगुण जो है वो क्रियाशीलता देता है, एक्टिव रहता है रजोगुण में व्यक्ति, और तमोगुण जो है वो अज्ञान और दुख देता है, इसलिए ये व्यक्ति निष्क्रिय रहता है। इस संसार में जो हम लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ इच्छाएं लेके आए हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण ने दुर्गा माता को नियुक्त किया हुआ है। और दुर्गा माता इन तीन गुणों के द्वारा हमको जो है वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। तो जैसे जेल भी तीन तरीके की होती है। सी टाइप जेल, जिसमें पूरा अंधेरा रहता है, जंजीर होती है, पानी और हवा आने की व्यवस्था नहीं रहती है, बहुत मेहनत पड़ती है, अंदर बहुत कष्ट होता है। फिर दूसरी बी क्लास जेल होती है, जो चोरों के लिए होती है, जो ज़्यादा बुरे नहीं हैं तो उनको कम मेहनत, कम परेशानी झेलनी पड़ती है वहाँ पे। और फिर ए क्लास जेल होती है, जिसमें मान लो किसी व्यक्ति को गार्डन सफाई करने को काम दे दिया जाता है, कभी लाइब्रेरी का उसको लाइब्रेरी इंचार्ज बना दिया जाता है जेल के अंदर ही। तो ऐसे ही नरक जो है वो सी क्लास है, जहाँ पे बहुत कष्ट दिए जाते हैं, और भूमि, ये जो पृथ्वी है, ये बी क्लास है, और स्वर्ग जो है वो ए क्लास है। तो ऐसे ये समझना चाहिए कि जो कोई ए क्लास जेल में है मतलब गोल्डन चेन से बंधा हुआ है, और कोई बी क्लास जेल में है तो वो सिल्वर की चेन से बंधा हुआ है, और अगर कोई सी क्लास में है तो मतलब आयरन की चेन से बंधा हुआ है। तो ये चेन से बंधा हुआ है। ऐसे मैंने एक बार एक क्लास में पूछा कि अगर आप गोल्डन चेन से बंधे हैं या सिल्वर चेन से बंधे हैं या फिर आयरन चेन से बंधे हैं, कौन से चेन से अच्छा है बंधना? तो ज्यादातर लोग बोले हमें गोल्डन चेन पसंद है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन एक माता जी बैठी हुई थी क्लास में, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम सब बेवकूफ हो, मुझे इस संसार से बाहर जाना है। तो स्वर्ग में जाना ये भी एक भौतिक इच्छा ही है। तो इस संसार में हम लोग बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को लेके आए हैं। कभी कभी हम कोई बहुत बुरी इच्छा हमारे पास होती है तो हमको उसके कारण बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो सतोगुणी जो हैं वो सुख को प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में, भगवान कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, गाय की सेवा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें ही भगवान हमसे करने को कहते हैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं। तो अभी ये समझिए, जो गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये केवल इस भौतिक संसार में ही अप्लाई होते हैं, ये आध्यात्मिक संसार में नहीं है। अगर हम भगवत धाम जाएंगे तो वहां पे तीनों गुण नहीं मिलेंगे। और अगर इस संसार में रहते हुए भी अगर हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान की भक्ति करने लगेंगे, तो भी ये तीन गुण जो है हमको छोड़ देंगे। जैसे भारत में जब हम रहते हैं तो अगर हम भारत के नियमों का पालन करते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चोर है तो वो पुलिस को देखता है, तुरंत भागने का प्रयास करता है, लेकिन हम लोग पुलिस को देख के भागने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग भक्ति में एंगेज रहते हैं तो माया से डरने का कोई समस्या नहीं है, वो हमको नहीं परेशान करेगी, हमको नहीं बांधेगी। और मान लीजिए अगर आप बंधे हुए भी हैं तो भी धीरे धीरे वो लूज छोड़ देगी, क्योंकि वो जानती है, माया देवी जानती हैं, कि इसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है, इसलिए गलत पथ नहीं चूज करेगा, गलत इच्छाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इच्छा जो है वो हमको नहीं छोड़ती है। तो चूंकि यहां पे गलत इच्छाएं नहीं है तो ये व्यक्ति सही से रहेगा, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है माया उसको त्याग देती है। तो यहां पर समझने की बात है कि अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो माया जो है धीरे धीरे अपनी जो चैन है उसको हटा लेती है हमारे ऊपर से। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था जब उन्होंने माखन चोरी किया था, मटकी फोड़ी थी, तो भगवान ने भगवान को बांध दिया। किसने? उनकी माँ यशोदा ने। कैसे बांधा था? तो प्रेम की रस्सी से बांध दिया था। वो उन्होंने बोला अगर तुम गलती करोगे तो मैं तुमको बांध दूंगी, तो वो रस्सी कौन सी थी? प्रेम की रस्सी थी, उससे भगवान बंधते हैं। और हम लोग कौन सी रस्सी से बनते हैं? हम लोग गुणों की रस्सी से बनते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनकी रस्सियों से बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कोई बच्चा है, उसको को उसके माता पिता झापड़ मारते हैं या एक पुलिस वाला झापड़ मारता है, इन दोनों में अंतर है। हाँ, माता पिता प्रेम करते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, पुलिस वाला मारना चाहता है। तो भगवान जो है वो कैसे है? माता पिता के समान है, और माया देवी किसके समान है? पुलिस के समान है। तो अगर हम लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे और मनमानी करेंगे तो हमारी समस्या बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आप आपके पास एक गाय है और आप मार्केट गए, मार्केट से आप गाय के लिए रस्सी खरीद के लाए, लगभग 2 मीटर की रस्सी खरीद के लाए। अभी आपको चेक करना है कि ये गाय जो है ये मारने वाली है कि नहीं, अटैक करने वाली है कि नहीं है। तो मान लीजिए कोई बच्चा उसके पास जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, तो वो मारने का प्रयास करती है या फिर नहीं करती है। तो अगर गाय जो है वो शांत है, समझ रहे हैं, गाय अगर शांत है तो क्या करेंगे, रस्सी की लेंथ बढ़ाई जा सकती है, रस्सी की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। हाँ, और एक मान लीजिए एक हफ्ते तक वो ऐसे ही रहती है, तो एक हफ्ते के बाद ऐसा भी हो सकता है कि गाय से रस्सी हटा दी जाए और बोला जाए भाई तुम घूम के आ जाओ, हाँ ये जो पूरा कंपाउंड पड़ा इसमें घूम सकते हो, और एक महीने के बाद उसको पूरे खेत में भी चरने के लिए भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर गाय जो है मारने वाली है तो रस्सी की लेंथ को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, उसका जो खूंटा रहता है उससे और टाइट बांध दिया जाएगा उसको। तो हमने देखा है गाँव में ऐसा होता है कि गांव में गाय जो होती हैं वो खुली छोड़ दी जाती हैं और दिन भर चर के शाम को अपने आप से अपने घर पे आ जाती हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हम लोग माया ये भगवान के नियमों का जो भौतिक संसार में नियम बनाए गए हैं उनके अनुकूल नहीं रहेंगे तो रस्सी जो है टाइट कर दी जाएगी और लूज कर दी जाएगी अगर हम उनके अनुकूल रहेंगे। हा? जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता को छोड़कर रोड की तरफ भागने का प्रयास करता है, उसको पता नहीं कि क्या क्या खतरे उसके अंदर जो रोड पे समस्या हो सकती है, जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, कभी किडनैप कर सकता है कोई उसको। तो ऐसे ही हम लोगों ने भी भगवान कृष्ण को छोड़ दिया है और इस डेंजर जोन में आ गए हैं। अभी इस जोन में आके एक ही ट्रिक है यहां से वापस जाने की, वो क्या है, माँ में ये प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो हम लोग सतोगुण को अगर बढ़ाएंगे तो सत्वगुण में क्या होता है, सुखम ज्ञानम, फिर रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, इस तरीके से होता है। तो इनका लक्ष्य क्या होता है, तो बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो स्वर्ग लोक की तरफ जाते हैं या उच्च लोगों की तरफ जाते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं वो इस पृथ्वी लोक पे रहते हैं, और तमोगुणी जो होते हैं वो कहां जाते हैं, वो नीचे के लोकों में जाते हैं या फिर जानवरों के जीवन को प्राप्त करते हैं या फिर पाताल लोक इत्यादि की तरफ लोग जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि कैसे इन गुणों से हम ऊपर निकल सकते हैं, कौन इन गुणों से ऊपर निकल गया है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो उसके बारे में हम लोग आज 15वें अध्याय में चर्चा करेंगे। 15वें अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है, HOME, एच फॉर होम और होटल, ओ फॉर ऑन एंड ऑन ओवर एंड ओवर अगेन, और एम फॉर मेंटेनर ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, और लास्ट में 15वें अध्याय का 16 से 18 तीन श्लोकों में सार। हालांकि यहां पे 20 श्लोक हैं, तो हम आगे चर्चा उसके बारे में करते हैं। हाँ, तो ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण एक परम रहस्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हम कई बार रहस्य के बारे में बात कर चुके हैं, रहस्य था परम रहस्य था, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये जो रहस्य है, ये 13 से 18 जो अध्याय हैं उनका सबसे परम रहस्य है। इसके बारे में भगवान इस अध्याय में चर्चा करते हैं। तो एक यहाँ पे एक पेड़ के बारे में चर्चा की जाएगी, ये आप देख रहे होंगे। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक रानी अपनी सखियों के साथ में एक सरोवर में स्नान करने के लिए गई। जब वो सरोवर में स्नान करने के लिए आई तो कपड़े वगैरह, गहने वगैरह उन्होंने जो है किनारे पर रख दिए सरोवर के, और उनके गले में एक नेकलेस वो पहनती थी, उस नेकलेस को भी वहां पर रख दिया उसने। फिर वो स्नान स्नान करके आई, इतनी देर में क्या हुआ, एक कौवा वो उस नेकलेस को लेकर उड़ गया। और रानी जब लौट के आई तो उसने देखा नेकलेस नहीं है। रानी ने सबसे ढूंढना शुरू किया, नेकलेस किसी के पास मिला नहीं। और इस तरीके से राजा के पास बात पहुंची, तो राजा से रानी ने कहा कि देखो वो मेरा नेकलेस खो गया है, तो आप जरा उसको ढूंढवा दो। तो राजा ने कहा खो गया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा दिला देते हैं। रानी ने कहा नहीं, वो मेरी एक विशेष याददाश्त के लिए है, इसलिए मुझे वही नेकलेस चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया। वो नेकलेस मान लीजिए 10 लाख का था, तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी उस नेकलेस को लेके आएगा मैं उसको 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। और इस तरीके से उन्होंने पूरे राज्य में ये बात फैला दी। तो एक बार की बात है, ये बात हो चुकी थी, उसके कुछ दिनों बाद एक साधु एक जगह से जा रहे थे। सुबह सुबह की बात है, वहां पे एक आदमी वो दूसरी जगह कहीं पे सरोवर में जो है वो कूद रहा था, और कूद के थोड़ी देर बाद वापस आ जाता था परेशान होके, थोड़ी देर बाद फिर कूदता था, फिर वापस आ जाता था। ऐसे करके साधु जब जा रहे थे तब उन्होंने ये देखा। शाम को जब वो वापस आ रहे थे तभी भी उन्होंने देखा ये आदमी वही कर रहा है, बार बार सरोवर में कूदता है और फिर खाली हाथ वापस आता है और फिर मुंह बनाता है। तो साधु ने पूछा क्या बात है बेटा? तो इसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं है, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला बताओ क्या बात है? तो जब बहुत इंसिस्ट किया तो इसने साधु से कहा लेकिन जो इनाम मिलेगा मैं इनाम आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा इनाम में। उन्होंने कहा ठीक है। तो साधु को उस आदमी ने दिखाया, सरोवर के अंदर वो नेकलेस दिखाई दे रहा था, लेकिन ये आदमी जब भी सरोवर में कूदता था तो नेकलेस उसको मिलता नहीं था। तो साधु ने थोड़ा ध्यान से देखा और साधु हंसने लगा। साधु उस सरोवर के पड़ोस में एक पेड़ था, जिस पेड़ पे वो चढ़ा और पेड़ पे ही नेकलेस जो है टंगा हुआ था। उस पेड़ की जो परछाई थी वो पड़ रही थी पानी के अंदर, और ये व्यक्ति सोच रहा था ये नेकलेस जो है कहां है, पानी के अंदर है। तो इस तरीके से इस व्यक्ति को नेकलेस मिल गया और साधु जो है वहां से जाने लगा। तो साधु ने उसको बोला कि ठीक इसी तरीके से इस भौतिक संसार में सुख नहीं है, सुख आध्यात्मिक संसार में है। अभी ये फोटो देखिए आप लोग जो देख रहे हैं, यहां पे दो जगत के बारे में चर्चा की जा रही है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत ये जो परछाई दिख रही है पेड़ों की ना, ये है भौतिक जगत। और आध्यात्मिक जगत क्या है, जो पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए किसी पेड़ में कोई आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं ऊपर, लेकिन परछाई में आम जो है नीचे भी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई नीचे तोड़ने के लिए जाएगा, पानी में कूदेगा, तो उसको पेड़ उसमें उसको कोई भी मिलने वाला नहीं है। तो वैसे ही हम लोग इस संसार में रहकर कभी मोबाइल, कभी कार, कभी घर, कभी पति, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी कभी किसी 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 चीजों में हम लोग सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे सुख ढूंढ रहे हैं? पानी के अंदर कूद कर। जो रियल सुख आध्यात्मिक जगत में मौजूद है, हम उसको ना देखकर हम इन सब जगहों पे सुख ढूंढ रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, बस अभी मिलने ही वाला है सुख, हाँ बस ये 6 महीने बाद मुझे सुख मिलने वाला है, साल भर बाद तो 100% मिल ही जाएगा सुख, हाँ फिर ये हो जाएगा उसके बाद तो सुख मिल जाएगा, उसके मेरा प्रमोशन हो जाएगा सुख मिल जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी मुझे सुख मिलेगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे मुझे सुख मिलेगा, हाँ मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी तब मुझे सुख मिलेगा, मेरे जब कार खरीदूंगा तब मुझे सुख मिलेगा। हाँ इस तरीके से उनको लगता रहता है कि सुख मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है, लेकिन कभी भी नहीं मिलता। एक बार एक गधे से बोला, एक गधा था, तो गधे का जो मालिक था धोबी, वो उससे खूब काम कराता था। वो पहले सुबह सुबह बहुत सारे कपड़े उसके ऊपर लाद देता था धुलने के लिए, और फिर उसको एक तालाब तक लेके जाता था, तालाब में सारे कपड़े धुलता था, गधे को ही बांध देता था, और जब सारे कपड़े गीले धुल जाते थे तो फिर उनको गीले कपड़ों को उसके ऊपर लाद देता था। इस तरीके से रोज वो जो है गधे के साथ ऐसा करता था। एक दिन गधे ने सोचा अभी मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा, तो धोबी आया, उसने कपड़े रखे, गधा आगे बढ़ा ही नहीं, तो धोबी अंदर से डंडा निकाल के लाया, दो डंडे मारे, अभी भी गधा आगे नहीं बढ़ा। तो गधा सोच रहा था मुझे अभी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे कुछ इंक्रीमेंट चाहिए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, एक गाजर लेके आया अंदर से और एक डंडा लेके आया, डंडे के आगे गाजर को बांध दिया, और उस डंडे को डंडे के आगे वाले भाग पे गाजर बांधा, पीछे वाले भाग पे को जो है उसकी गधे की पीठ से बांध दिया। कैसा लगता था, गाजर जो है 2 फुट आगे जो है गधे के रहता था, गधे के मुंह के 2 फुट आगे गाजर रहता था। अभी सारा कपड़ा भी लाद दिया, अभी तो इसको लग गया अरे वाह मुझे तो इंक्रीमेंट मिल गया, मुझे अभी फायदा हो गया, चलो मैं आगे चलता हूं उस गाजर को खा लेता हूं। तो गाजर को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता था गाजर भी 2 फीट आगे बढ़ जाता था। इस तरीके से बेचारा ये सोचता रहा कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, करते करते ये कहां पहुंच गया, धोबी के घाट पे पहुंच गया। और घाट पे पहुंच के धोबी ने क्या किया, गाजर को निकाल के जेब में डाला और उसी डंडे से 2 लगाया उसको, बोले भाग यहां से। और शाम को फिर से उसने यही किया, फिर से गाजर लगाया, और ये गधा यही सोच रहा था अब बस दो फीट बाद सुखी मिल जाऊंगा, मुझे 2 फीट के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोचते सोचते ये वापस घर आ गया। तो ठीक वैसे ही हम लोग भी कई सारी चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं। पहले हम सोचते हैं साइकिल में सुख है, साइकिल के बाद नहीं स्कूटर मिल जाए, स्कूटर के बाद बाइक मिल जाए, बाइक में कार मिल जाए, कार के बाद बड़ी कार मिल जाए, बड़ी कार के बाद महंगी कार मिल जाए, महंगी कार के बाद चौपर मिल जाए, इस तरीके से सोचते रहते हैं। कोई व्यक्ति गांव में रहता है सोचता है चलो सिटी चलें, सिटी वाला सोचता है तो चलो बड़ी सिटी चलें, बड़ी सिटी वाला सोचता है अरे बेकार है इंडिया अमेरिका चलते हैं, अमेरिका वाला सोचता है चलो चंद्रमा पे चलते हैं। तो इस तरीके से संसार में रहते हुए कभी भी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती, ना तो इस वे में ना उस वे में, और दुख मिलता है। तो वो लोग जो लोग ऐसे हैं वो सुखी नहीं रहते, वो उनके पास जो है वो उसको चाहते नहीं है, और जो उनके पास नहीं है उसको चाहते रहते हैं। तो अगर पेड़ पे आम है तो अगर पानी में आम दिखाई दे रहा है तो भी आपको आम अगर प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, पेड़ पे ही चढ़ना चाहिए, जिससे आपको पानी में जंप मारने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही ये जो भौतिक संसार है ये नकली आम के पेड़ की तरह है, और आध्यात्मिक संसार वास्तविक पेड़ की तरह है। तो ये जो नकली आम है वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर हमें असली आम प्राप्त करना है, या कहें कि हमें असली आनंद प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान के धाम वापस जाना पड़ेगा। असतोमा सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर जाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम भौतिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक संसार की तरफ जाएंगे। तो भौतिक जगत में क्या है, वो भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, विकृत सही नहीं है, नकली प्रतिबिंब है। जैसे कभी कभी छोटे पे नकली नोट मिलते थे, हम 1 रुपए में 1000 रुपए का नोट मिल जाता था, हम कहते थे अरे बड़ी बहुत अच्छा है, तो 1 रुपए का सिक्का लेके आए और 1000 रुपए का नोट मिल गया, लेकिन वो नोट कैसा है, नकली है। ऐसे ही आध्यात्मिक संसार में जो हमारा शरीर होता है वो सच्चिदानंद होता है, और उस शरीर में कोई कभी रोग नहीं आता, कभी कोई बीमारी नहीं आती, मृत्यु भी नहीं आती, जैसे कि वास्तविकता ऐसी है। लेकिन इस दुनिया में नकली आम देखने में चकाचक लगता है, ये हमारा जो शरीर भी है ये भी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन 1 mm की जो खाल लगी हुई है ऊपर, उस खाल को अगर हटा दें, या सोच लीजिए अगर ये खाल जो हमारे शरीर पर लगी हुई है जिसके कारण हम किसी को अच्छे लगते हैं, कोई हमको पसंद करता है, अगर ये 1 mm की खाल ऊपर से हटा दी जाए, या फिर ये 1 mm की खाल जो है ये पारदर्शी हो जाए कि अंदर दिखने लगे कि क्या है, तो कोई भी हमसे प्रेम नहीं करेगा, सब हमसे दूर भागेंगे। ये देखिए, जैसे ये मार्बल लगा हुआ है असली मार्बल, और ये क्या है, ये नकली मार्बल है। आप देखे होंगे ये ऐसा अभी आजकल आता है नकली मार्बल टाइप का, वो केवल कागज लगा देते हैं और नकली मार्बल, वो मार्बल जैसा लगता है लेकिन मार्बल नहीं है, ये असली नोट है और ये नकली है। असली आम, असली आम का जूस नहीं मिलेगा और ये नकली आम, आपने देखा होगा ये 100 पीस में आम बना देते हैं वो है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक सौंदर्य ये है और ये भौतिक सौंदर्य है। रोते हुए संसार में परेशान है, बहुत दुख है और आध्यात्मिक संसार बहुत सुंदर है। तो आध्यात्मिक संसार जहां पर स्वयं भगवान रहते हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है, हम लोग भी सच्चिदानंद हो जाएंगे। तो इसलिए असली सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक चीजों से, हमें आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए, आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में आता है वास्तव मत, बोलते हैं कि वास्तव मत्र वस्तु सिविदम तापत्रयोन्मूलनम, जो आत्मा और परमात्मा है वो क्या है, वास्तविक वस्तु है, वास्तव वस्तु है। तो अभी आपको क्या चाहिए, कभी कभी पूछते हैं आपको टेम्परेरी जॉब चाहिए या परमानेंट जॉब चाहिए, हम टेम्परेरी नहीं चाहते, हमें परमानेंट चाहिए। तो आध्यात्मिक संसार में राधा, देखिए ये जो पिक्चर बनाया हुआ है, ये दुख ऋण अक्ष और धन अक्ष में आध्यात्मिक आनंद, बीच में शांति, शांति मतलब 0-0, ऋण अक्ष मतलब माइनस और धन अक्ष मतलब प्लस में। तो आप राधा कृष्ण है वो कहां पे, धन अक्ष में है, प्लस में है, और ऋण अक्ष में क्या है, नीचे के सेंस ऑब्जेक्ट्स और जो हम लोग हैं रहते हैं वो सब किस में आता है, दुख में आता है। और जो शांति वाली स्टेज कौन सी है, ब्रह्म ज्योति, उसको क्या बोलते हैं, ना तो वहां पे दुख होता है ना सुख होता है, शांति रहती है। तो इस स्लाइड में आप देखिए ये जो राधा कृष्ण है ये कौन सा संसार है, आध्यात्मिक संसार है, आनंदमय संसार है। यहां पर राधा कृष्ण लीलाएं करते हैं और कई सारे जो भक्त हैं उनके वो उनमें मदद करते हैं। इच्छा मतलब जीव की इच्छा, अभी कुछ कारणवश हम लोग उस संसार से इस संसार में आ गए हैं, अभी हमने कृष्ण को त्याग दिया है और इस संसार में, इस भौतिक संसार में जो नकली पेड़ की तरह है वहां पे हम कूद गए, अभी हम कृष्ण से दूर हो गए और इस माया की तरफ आ गए, नकली आम। तो अभी ये जो 14 लोक बताए जाते हैं, हम उन 14 लोकों में आ गए हैं जो कि पानी के नीचे हैं, 14 लोक। तो अभी आप ये 3 फेस देख रहे हैं, पहला वाला बहुत खुश है, दूसरा वाला नॉर्मल है और तीसरा वाला रो रहा है, दुखी दुख है। अभी कोई व्यक्ति हो सकता है -500 से -300 में आ जाए, लेकिन फिर भी वो है माइनस में ही, थोड़ा सा सुख उसको जरूर मिला लेकिन फिर भी वो कैसे है, माइनस में ही है। जैसे पहले कैदियों को कष्ट दिया जाता था तो कैसे देते थे, सजा कैसे देते थे, एक बड़े से ड्रम में पानी भरते थे और कैदियों का गला पकड़ के उनका मुंह को पानी में डुबोया जाता था, और जब भी वो कैदी छटपटाने लगता था तब उसको निकालते थे। तो एक कैदी क्या सोचता था, मैं कितना सुखी हूं, तो उसको लगता था वो नीचे दुखी है और देखो यहां पे कितना सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो तो उसकी वास्तविक स्थिति है, दुख में उसको जबरदस्ती डाला जा रहा है। तो इस संसार में कभी कभी हमें दुख से थोड़ा सा रिलीफ मिलती है, ये दुख से रिलीफ, ये सुख नहीं है, ये क्या है, हम इसको मान लेते हैं कि सुख है, दुख से रिलीफ को हम सुख मान लेते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस संसार को जानते हैं कि संसार कष्टों से भरा हुआ है, इसमें 3 क्लेश हैं, 4 समस्याएं हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, शांति शांति शांति। तो क्या करते हैं, वो ऋण अक्ष से दुख से लेके वो कहां पे आ जाते हैं, शांति पे आ जाते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, सुख नहीं है। तो वो 0-0 लेवल पे आए हैं, इसके ऊपर नहीं आ पाए। तो यहां पे कॉज कैसा है, न तो दुख है न सुख है, लेकिन जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो सुखी है, वो पॉजिटिव एक्सेस है, वहां पे कृष्ण रहते हैं सारे शुद्ध भक्तों के साथ, वहां पे ना तो काम है ना क्रोध है ना लोभ है, सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, वो भगवान के नाम लीला गुण में रमण करते हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पहला श्लोक, श्री भगवान वाच ऊर्ध मूल मधम साखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य परिणानी यस्तम वेद सवेदित। ये ऊर्ध मूल मधा साखम, ये अश्वत्थ वृक्ष जो है ये कैसा है, ऊर्ध मूल, इसका मूल जो है यानी कि इसके जो जड़ है वो कहां है, ऊपर की ओर है, इसकी जड़ ऊपर की ओर। नीचे वाला जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, राधा कृष्ण के नीचे देखिए एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ ऊपर है और उसकी शाखाएं जो है वो क्या है, नीचे की ओर है, पत्तियां भी नीचे की ओर है। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी पानी में देखते हैं उल्टा, वैसे ही। तो ऊर्ध्व मूल मध्यम शाखम, और बोलते हैं ये जो नीचे शाखाएं दी गई हैं, ये शाखाएं क्या हैं, ये भोग विषय कई सारे प्राणी इसमें जो हैं वो वास कर रहे हैं और कई सारे फलों को टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग इसमें भोग ढूंढ रहे हैं, जैसे कि कभी कभी बच्चा जो है वो गुब्बारे की ओर भागता है, तो हर तरीके की सुविधा यहां पे संसार में दी है, लेकिन कैसा वो भोग कैसा है, वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को क्या चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए। कोई थोड़ा जवान हो गया, मुझे स्त्री चाहिए। थोड़ा बड़े होने पर मुझे और पैसा चाहिए। कोई रजोगुणी है, वो कामुक होता है, स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर अलग अलग होते जाते हैं। कोई तमोगुणी होता है, उसको कुछ और चाहिए। तो इस संसार में जीव जो है इधर उधर भाग रहा है, और इसके बारे में बताया जाता है कि सुदृढ़ मूलम, इसकी जो शाखा है, इसकी जो मूल है यानी कि जो जड़ है वो सुदृढ़ है, बहुत बड़ा ये वृक्ष है, और उस वृक्ष में जीव जो है एक छोटा से कीड़े के समान है। इवन आप समझ लीजिए इस संसार में जो भौतिक ब्रह्मांड है हम उसको भी नहीं समझ सकते। इस जो पेड़ है उसकी जड़ और उसका जो सबसे उच्च भाग है उसको भी नहीं समझ सकते, इसकी शुरुआत और अंत को भी नहीं समझ सकते। और इसका तना जो है वो बहुत दृढ़ है, और जो पोषण इस तने को होता है वो पोषण कहां से होता है, तीन गुणों के द्वारा पोषण होता है इस तने का। ये जो वृक्ष का तना है, जो मेन पार्ट होता है वो उसका तना, उसको बोलते हैं तना। तो उसका पोषण कहां से होता है, तीन गुणों के आधार पर होता है। चूंकि ये तीनों गुण कार्य कर रहे हैं इसीलिए संसार चल रहा है, और अगर कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर है तो वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो लेकिन सारे जीव जो है संसार में वो क्या कर रहे हैं, भोग के पीछे भाग रहे हैं, जिह्वा के लिए अच्छा अच्छा मन का खाना खाना चाह रहे हैं। कभी कभी कोई बूढ़ा हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहता है नहीं आपको अभी तेल वाली चीजें नहीं खानी है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पूड़ी पकौड़े समोसे खाने के लिए वो खाने लगता है। तो जैसे कभी कोई व्यक्ति बहुत मधुर गीत सुनना चाहता है कान से, इस प्रकार से व्यक्ति जो है संसार में फंस जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ अच्छा देखना चाहता है, कभी कुछ अच्छा सूंघना चाहता है, कभी टच करना चाहता है कुछ नाजुक वस्तु को, मुलायम वस्तु को। तो इस तरीके से पांच अवयव जो हैं ये पांच ओर लेके जाते हैं। तो अभी भगवान कहते हैं आगे, इस अगले श्लोक में बोलते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। जो हमने चर्चा किया कि इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। भगवान आगे कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। चौथी लाइन, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इस वृक्ष को काट डालो हे अर्जुन। भगवान पूरे इसका अनुवाद पढ़ता हूं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहां है, अंत कहां है, इसका आधार कहां है, लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से उसको वापस न लौटना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता हुआ आया है। तो भगवान कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, विरक्ति का जो जो अस्त्र है, शस्त्र है, उस विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काट डालना चाहिए, जो विरक्ति का शस्त्र है। तो अगर कोई व्यक्ति वैराग्य के द्वारा इस पेड़ को काट डालता है तो परम पद को प्राप्त करता है। परम पद का अर्थ होता है फिर उसको वहां से वापस नहीं लौटना पड़ेगा। कोई कहता है प्रभु जी अगर हम वापस नहीं लौटते तो हम यहां कैसे आए? तो हम यहां पे अभी पहली बार आए हैं, अब हम यहां से अब जब जाएंगे तो हम भगवान के धाम से वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी तक हमको मेटेरियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब हम जब यहां से जाएंगे तो मेटेरियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कि बहुत दुख है संसार में, इसलिए अभी इधर नहीं आना है, हमें भगवान के धाम में रहना है, तब फिर हम वापस नहीं आएंगे। जैसे कभी कभी बच्चा होता है वो आग को छूना चाहता है, या फिर पंखा चल रहा होता है पंखे को छूना चाहता है, जो स्टैंड वाला फैन होता है उसको छूना चाहता है, तो माँ उसको मना करती है नहीं जल जाओगे कट जाओगे, लेकिन बच्चा सुनता नहीं है। बाद में माँ जब इधर उधर चली जाती तो आग में हाथ डाल देता है या फिर पंखे में हाथ डाल देता है, तो पंखे से उसको चोट लग जाती है या आग से वो जल जाता है। अभी जब उसको एक्सपीरियंस हो गया अभी वो पंखे और आग के पास में कभी भी नहीं आएगा। ठीक वैसे ही माया हमको यहां पे अच्छा एक्सपीरियंस देती है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस देती है कि वापस नहीं आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं बिल्कुल कि हाँ अगर यहां से कोई जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए भगवान आदि पुरुष हैं, उनका शरण हमको, उनके शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। अभी प्रश्न आता है कि उस पद को कैसे ग्रहण किया जाए जिस पद को ग्रहण करके हमारे भौतिक कष्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो भगवान 5 नंबर श्लोक में उसके बारे में बताते हैं। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्। भगवान कहते हैं जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हो गए हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो उस राज्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निर्माण मोहा बनना पड़ेगा, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा बनना पड़ेगा, उसको झूठा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी व्यक्ति संसार में रहता हुआ दुख को सुख मानता है। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीता है उसको क्या मतलब मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन वो दुख है, धुआं, वो धुएं को अंदर लेता है। और कभी कभी दारू पीता है, दारू पीने को सुख मानता है, मांस खाने को सुख मानता है, मांस खाता है उसका जो पाचन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। और कोई अगर दारू पीता है तो उसको भी लीवर में प्रॉब्लम होती है, ये इतना दुख को भी वो सुख मान लेता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो दुख देने वाली चीजें इस संसार में हैं वो ज्यादा चमक धमक वाली होती हैं, जो चकाचक दिखती हैं समझ लीजिए कष्ट देने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कभी कभी हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो समोसे वाला समोसे लेके आता, चकाचक दिखते हैं बिल्कुल तले हुए मस्त गरम गरम, लेकिन आप उनको खा लेंगे सुबह पता चलेगा कि यार ये मैदा खा लिया मैंने, कितना दुख हो रहा है उसके कारण। ऐसे ही आजकल देखा जाता है कि लोग हीरो हीरोइन के को देखते हैं और सोचते हैं कि इस हीरो से मेरी शादी हो जाए या इस हीरोइन से मेरी शादी हो जाए, कम से कम इसके जैसा सुंदर होना चाहिए। लेकिन जब बाद में उनका विवाह होता है तो विवाह के दिन से ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और मिला कम है। वो उनको बोलता है, कहता है तुमने अपनी शक्ल देखी है? तो वो बोलते तुम्हारी शक्ल बंदर के जैसी है। और इस तरीके से वो एक दूसरे को जो है गालियां देना शुरू करते हैं और फिर जो भी है। तो जो अच्छा लगता है वास्तव में वो अच्छा होता नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में अशुद्धि भरी हुई है। हम लोग अशुद्धि के कारण इस संसार में, किसी बच्चे को पूछो बेटा फल खाओगे या चॉकलेट खाओगे, क्या बोलेगा? चॉकलेट खाऊंगा, फल नहीं खाएगा। फल शरीर के लिए अच्छा है, चॉकलेट शरीर के लिए खराब है, लेकिन दिखती अच्छी है। तो ये ऐसा संसार में देखा जाता है कि हमारी जो हृदय में अशुद्धि है उसके कारण हम लोग गलत चीज का चुनाव कर लेते हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण को छोड़ देना चाहिए, सतोगुण और शुद्ध सतोगुण की ओर बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक विषयों को पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों को करना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और काम इत्यादि जो वासनाएं हैं उनको भूल जाना चाहिए। तो ये जो हमको पहले अच्छा लगता है, ये दुश्मन है आत्मा का, और ये जीव को भुलक्कड़ बना देता है, मूर्ख बना देता है, लोगों को बहुत समय तक ठगता है। ये ज्ञान और विज्ञान को भी ना, उनको भी खत्म करने वाला है। तो इसलिए जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं उनको ये सब नहीं करना चाहिए। उनको ये सब कामों में नहीं फंसना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना, उनको समझना चाहिए कि इस तरीके से करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और उन्हें शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, उनको भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करनी चाहिए। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो पराजय हो, उन सब में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो बोलते हैं अमूढ़ होना चाहिए। अमूढ़ मतलब क्या होता है, गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब मोह रहित होना चाहिए। मूढ़ जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले वो होते हैं जो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो अपने आप को शरीर समझते हैं, एक होते हैं उनको मूढ़ बोलते हैं। और दूसरे मूढ़ वो होते हैं जब जो ये सोचते हैं कि भगवान जो है जब इस संसार में आते हैं तो भगवान भी हमारी तरह हो जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं। तो कभी कभी वो मायावादी लोग उनको बोलते हैं, मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि अभी हम लोग जो है इस संसार में हैं, माया के अंदर हैं, और जैसे ही संसार से हम बाहर जाएंगे हम भी भगवान बन जाएंगे, मैं भी भगवान हूं तुम भी भगवान हो, बस समय का अंतर है, जैसे समय हो जाएगा हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन सोचना चाहिए, कभी कभी जेल में प्रेसिडेंट भी आता है उस देश का, लेकिन उस देश का प्रेसिडेंट जब उस जेल में आता है तो वो बंदी बन के नहीं आता है, वो वहां पे प्रेसिडेंट बन के ही आता है, और वो देख के फिर वहां से अपनी इच्छा से बाहर निकल जाता है, वो माया वहां के जेलर की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इस संसार में हम लोग आए हैं, अपने कर्मों के कारण आए हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से आते हैं, जब भी आते हैं। हाँ, हम जो है अपनी इच्छा से नहीं आए, हमको भेजा गया है। तो हमें समझना चाहिए कि हम ब्रह्म हैं, भगवान परब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं और भगवान परमात्मा हैं, हम विभू हैं, हम अणु हैं, भगवान विभू हैं, हम जो है भगवान के दास हैं और भगवान जो है वो स्वामी हैं। तो जो ये नहीं जानता उसको मूढ़ बोला जाता है। तो इस प्रकार आगे भगवान 6 नंबर श्लोक में बोलते हैं, इस संसार के बारे में बोलते हैं, आध्यात्मिक संसार के बारे में। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बिल्कुल साफ साफ भगवान बोल रहे हैं, ना तद्भासते सूर्यो, उस जगह सूरज की जरूरत नहीं है इसलिए सूरज वहां पे काम नहीं करता है, न शशांको न चंद्रमा की जरूरत है, न पावका वहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है। क्या है वो, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो एक बार वहां जाता है उसको रिटर्न नहीं आना पड़ता यहां पे, तद्धाम परमम, वो मेरा धाम है। तो ये धाम के बारे में भगवान बताते हैं। हाँ? तो आप कभी इस आध्यात्मिक संसार में हर जीव के शरीर से प्रकाश निकलता है, सारे जीव दैदिप्यमान हैं, और भगवान का भी जो रूप है वो भी दैदिप्यमान है, तो वहां पे किसी और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे हर व्यक्ति भौतिक आध्यात्मिक संसार में सब भगवान विष्णु की तरह ही हैं। हाँ, ये देखिए, तो सब लोग विष्णु की तरह दिखते हैं, सब लोग विष्णु की तरह दिखते हैं, एक दो ही अंतर हैं, भगवान विष्णु के हृदय में एक भगवान एक कौस्तुभ मणि पहनते हैं, और साथ साथ में भगवान के सीने पे एक सुनहरे बालों का गुच्छा है जिसको श्रीवत्स कहते हैं। तो ये दो अंतर हैं जिससे पहचान सकते हैं कि विष्णु कौन है और विष्णु दूत कौन है। तो बाकी बिल्कुल विष्णु जैसे लगते हैं सारे लोग, वो क्या करते हैं, तो उनको भगवान से कोई भी अपेक्षा नहीं रहती है, बल्कि वो भगवान की हमेशा सेवा करने में लगे रहते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम लोग जब विशुद्ध सत्व में आएंगे, कोई गर्व नहीं रहेगा, कोई शिथिलता नहीं होगी भक्ति में, कोई अहंकार नहीं होगा, तब हम जो है इस आध्यात्मिक संसार को पार प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक संसार के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है। बताते हैं कि वहां जो पेड़ हैं वो सारे के सारे पेड़ कल्प वृक्ष हैं। मान लीजिए आप केले के पेड़ के पास जाइए, उसको बोलिए मुझे आम चाहिए तो आम मिल जाएगा, आप उसको बोलिए मुझे सोना चाहिए तो सोना मिल जाएगा। ऐसे वृक्ष हैं वहां पे, कल्प वृक्ष हैं, वो भी आध्यात्मिक हैं, जो चाहिए वो देते हैं। लेकिन यहां का केले के पेड़ पे जाओगे तो केला ही मिलेगा, वो भी तोड़ना पड़ेगा। तो वहां और लोगों का क्या है, तो बोलते हैं वहां जो पक्षी हैं, वो पक्षी जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बहुत सुंदर सुंदर आवाज से कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कभी कोयल गाती है, कभी मोर बोलता है, इस तरीके से अन्य अन्य बहुत सारे पक्षी गाते हैं। लेकिन जैसे ही भौरा आता है तो सारे पक्षी शांत हो जाते हैं और भौरे की गुनगुनाहट को सुनने लगते हैं, क्योंकि भगवान को भौरे की गुनगुनाहट बहुत पसंद है। ऐसे ही वहां पे बहुत सारे फूल हैं, मंदार पुष्प बहुपुष्प, बहुत सारे पुष्प हैं वहां पे, बहुत सारे पुष्प के बारे में वहां पे चर्चा किया है। आप अगर भागवतम में पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में, तो वो पक्षी जो पुष्प है वो बहुत अच्छी अच्छी इसमें लाती है, स्वर्ण चंपा है, नाग चंपा है, लिली है, बहुत सारे पुष्प हैं। और लेकिन जब वो लोग तुलसी को देखते हैं तो सब पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुलसी जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। वहां पे कई सारे स्त्री पुरुष हैं, वो स्त्री पुरुष जो हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, और वो विमानों में इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर काम भावना कभी भी जागृत नहीं होती। वो आपस में साथ में रहते हुए भी, इतनी सुंदर स्त्रियां हैं यहाँ के, जो भौतिक संसार तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग की जो अप्सराएं उनको भी छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर हैं, लेकिन उन सब के अंदर काम कभी भी जागृत नहीं होता है। वो दोनों भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं। तो वहां पे ना तो ईर्ष्या होती है, ना इंद्र तृप्ति की संभावना रहती है, और ना ही किसी सेवा में सुख ढूंढने की संभावना रहती है। कोई काम नहीं है वहां पे। तो वहां पे जितने भी पुरुष हैं सब लोग नीले बादल के जैसे कलर वाले हैं। उनकी बॉडी का कलर कैसा है, जैसे नीले बादल होते हैं, वो कलर है। और जितनी भी स्त्रियां हैं वो किसकी तरह, बिजली की तरह, उनका कलर जो है व्हाइट रहता है, ऐसा उनका कलर बताया गया है। तो ऐसे वैकुंठ में, एक जैसे वैकुंठ में किसी कोई स्त्री के गले में एक आभूषण रहता है जो विशेष आभूषण होता है, ऐसे ही उस वैकुंठ रूपी शरीर में एक विशेष आभूषण है जिसको हम बोलते हैं गोलोक वृंदावन। वहां पे गोलोक वृंदावन उस जगह का नाम है। वहां जैसे यहां पे देखा जाता है एक बिल्ली और चूहा या फिर सांप और नेवला, इनमें नैसर्गिक जो है वो झगड़ा रहता है। लेकिन भौतिक ये आध्यात्मिक संसार में, खास करके वृंदावन में, वहां पे ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं था। उस वन में यहां तक कि शेर भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, गाय भी रहती हैं, लेकिन वहां कोई भी शिकार नहीं करता, कोई हिंसा नहीं है वहां पे। वहां जो शेर है वो भी दूध पीता है। इस भौतिक संसार में बोला जाता है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जैसे मक्खी है तो मक्खी को मेंढक खा जाता है, और सांप जो है मेंढक को खा जाता है, फिर चील जो है सांप को खा जाता है, और शिकारी जो है चील को खा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। उधर कैसा है, जी और जीने दो। भौतिक संसार में जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन वहां कैसा है, जी और जीने दो। तो हम लोगों को इस जीवो जीवस्य जीवनम से उठ के जी और जीने दो प्लेटफॉर्म तक जाना चाहिए, उस संसार तक जाने का प्रयास करना चाहिए। अभी भगवान आगे बोलते हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान करसति। इस बद्ध जगत में यानी इस भौतिक संसार में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, दे आर माई पार्ट ऑफ द बॉडी। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। छह इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, और साथ साथ में मन। बोलते हैं वो सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जब तक जीव जो है भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में नहीं जाएगा वो संतुष्ट नहीं हो सकता। हम सब भगवान के अंश हैं। जैसे हम लोग हमारे माता पिता और भाई हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट संबंध रहता है तो हम उनको पहचानते हैं, ठीक वैसे ही हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है। जैसे आप कोई पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकिए, वो पत्थर नीचे फिर से आ जाता है, क्योंकि वो पत्थर नीचे से बिलोंग करता है। जैसे पानी जो है वो समुद्र से लिया जाता है और बादल बना के बारिश की जाती है, और बारिश के द्वारा वो नहरों के द्वारा नदियों के द्वारा फिर से समुद्र में पहुंच जाता है। जैसे आप आग जलाते हैं तो चिंगारी हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती, क्योंकि वो सूर्य का जो है सोर्स, उसका सोर्स सूर्य है। तो वैसे ही आत्मा जो है वो भगवान के धाम से है, इसीलिए उसे भगवान की ओर जाना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव जो है वो मेरा अंश है। कब से है? सनातन समय से है, सनातन रूप से है। अभी ये आप देख रहे हैं जो पिक्चर, इस पिक्चर में अलग अलग रसों में भक्त जो है भगवान की सेवा करते हैं। जैसे पहली जो पिक्चर है जिसमें कृष्ण बीच में है और कुछ बड़ी गोपियां वो कृष्ण को डांस करने को बोल रही हैं। एक गोपी कहती है कृष्ण तुम डांस करो मैं तुमको मक्खन दूंगी। एक गोपी कहती है कृष्ण मैं तुम्हारे लिए मैसूर पाक बना के लाई हूं वो दूंगी अगर तुम डांस करोगे। एक गोपी कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाई हूं तुम डांस करो, मैं तुम्हारे लिए जो लड्डू लेके आई हूं। भगवान कहते हैं अच्छा तुम सब लोग लेके आई हो, मैं डांस भी करूंगा और गाना भी गाऊंगा, चलो सब लोग मेरे लिए सारे आइटम यहां पे रख दो। और फिर इस तरीके से भगवान जो है वात्सल्य रस का वहां पे लुत्फ उठाते हैं। फिर पड़ोस में आप देख रहे हैं राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हैं, तो ये रस कौन सा है? माधुर्य रस है। उसके नीचे आप देख रहे हैं इधर भगवान गाय और बछड़े के साथ बैठे हुए हैं, ये शांत रस है। और चौथा यहां पे सख्य रस दिखाया गया है कि किस तरीके से भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। वो लोग ऑफिस नहीं जाते, कृष्ण या कृष्ण के दोस्त कोई ऑफिस नहीं है, कोई नौकरी नहीं करते, क्या करते हैं? गायों को चराने जाते हैं। गाय तो अपने आप चरती है, उनको थोड़ी चराने के लिए कुछ घास अलग से देनी पड़ती होगी, तो वो लोग गाय और बछड़े चरते रहते हैं, ये लोग अपना पूरे दिन खेलते रहते हैं। उनका काम क्या है? लीला करना, और कोई काम ही नहीं है उनके लिए। तो इसी तरीके से हम लोग भी किसी ना किसी रस में है, किसी ना किसी रस में है हम लोग, अभी हम उसको भूले हुए हैं। तो जैसे ये हाथ है हमारा, इस हाथ के ऊपर किसी भी तरीके का ग्लव्स पहना जा सकता है, कोई विंटर ग्लव्स पहन सकता है, कोई स्पोर्ट्स ग्लव्स पहन सकता है, हाथ वही है लेकिन ग्लव्स अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हम लोग जो हैं अभी हमारा जैसे हाथ जो है सिकुड़ गया है, क्योंकि बहुत दिनों से हमने भगवान की सेवा नहीं की है इसलिए जैम हो गया है। लेकिन जब हम गुरु और वैष्णवों से मिलते हैं तो आत्मा क्रियाशील हो जाती है और वो पहचान जाती है कि मैं इस भौतिक संसार से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं आध्यात्मिक संसार से बिलोंग करती हूँ। जैसे हम बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं, एकदम से कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हमें जब पता चल जाता है कि हम भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध है, हम उस संबंध को भूल गए हैं, अभी हमें उस संबंध को वापस पाने का प्रयास करना चाहिए। अभी भगवान बोलते हैं अकर्म के बारे में, जब जीव कृष्ण की सेवा करने का चयन करता है तो उसे अकर्म या भक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति कुछ पुण्य कर्म करता है तो उसको सकर्म बोलते हैं, कोई पाप कर्म करता है तो उसको विकर्म बोलते हैं, लेकिन जब जीव कृष्ण की सेवा करने को सोचता है तो उसको अकर्म या भक्ति कहा जाता है। तो जब कोई सकर्म करता है तो पुण्य मिलता है और हो सकता है उसको स्वर्ग मिले, कोई विकर्म करता है तो उसको पाप लगता है और हो सकता है उसको नरक में जाना पड़े, लेकिन कोई अकर्म करता है तो उसको कहां जाने को मिलता है? आध्यात्मिक संसार में जाने को मिलता है। तो जो जीव इस संसार में अटक गया है और भगवान के पास जाने की चेष्टा नहीं करता है उसका क्या होता है? क्योंकि अगर व्यक्ति भगवान के पास जाने की चेष्टा करेगा तो अकर्म करेगा, अकर्म जो है व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा और उसे आध्यात्मिक संसार में सर्वोच्च स्थान भी प्रदान करेगा। तो आठवें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो ऐसी चेष्टा नहीं करता है उसका क्या होता है, जो भगवान के धाम जाने का प्रयास नहीं करता है उसका क्या होता है? शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो बोलते हैं जैसे शरीरम यदवाप्नोति, संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को लेके जाती है। कभी कभी हम ट्रेन में जा रहे होते हैं तो मान लीजिए कोई जानवर मर गया है और ट्रेन वहां से पास से निकलती है तो कैसे गंध आ जाती है। वो जानवर नहीं आया लेकिन उसकी गंध जो है वो कौन लेके आ जाता है, हवा उसकी गंध को लेके आ जाती है। या कभी कभी हम लोग किसी गार्डन के पास से गुजरते हैं तो वहां पे जो फूल लगे हुए हैं उनकी खुशबू हमें आ जाती है। ठीक वैसे ही हमारी मृत्यु होने के बाद मन बुद्धि और अहंकार जो कि स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर को छोड़कर आत्मा को कवर करके दूसरे शरीर में पहुंच जाता है और इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो मन बुद्धि और अहंकार जो है वो वही रहता है, वही वाहन रहता है आत्मा के लिए। तो मृत्यु के समय स्थूल जो शरीर होता है उसको तो जला दिया जाता है पर सूक्ष्म शरीर जो है वह आत्मा के साथ चला जाता है और जब आत्मा पुनः दूसरे शरीर को प्राप्त करती है तो मन बुद्धि अहंकार साथ में आता है। तो जन्म कैसे मिलता है, किस आधार पर जन्म देते हैं? तो मान लीजिए आपको एक कपड़ा खरीदने के लिए जाना है, आप कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे गए, आपको एक कपड़ा पसंद आ गया, आपने कहा मुझे एक कपड़ा चाहिए, रेट क्या है इसका? उसने बोला 2000 रुपए। हैं 2000 रुपए, मेरे पास तो 500 रुपए ही है। तो बोलता है नहीं, 500 में नहीं मिलेगा, अगर आपको यह चाहिए तो आपको 2000 रुपए आपके पास होने चाहिए, यानी आपके कर्म होने चाहिए अगर आपको ये वाला शरीर चाहिए। तो नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? तो जितना आपके पास है ना उसके हिसाब से आपको शरीर मिलेगा। तो 500 रुपए है, चलो 500 रुपए वाले कपड़े तुमको दिखा देता हूं, वो देख लो चल के। तो ऐसे ही जीव जो है वो उसके हिसाब से धनी, पढ़ा लिखा, सुंदर शरीर इत्यादि इत्यादि, उसके अकाउंट में जिस हिसाब से कर्मों का लेखा जोखा होता है उसके अनुसार ही वो प्राप्त कर पाता है। ऐसे कहते हैं ना, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा किया उतना ही वो पाता। हा? तो हिसाब किताब जो है वो देखा जाएगा, तुमको यह सब नहीं मिलेगा, तुम योग्य नहीं हो, तुमको यही मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। तो इसलिए अभी इस लाइफ में पुण्य करके नेक्स्ट लाइफ में अच्छा शरीर पा सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो नहीं चाहता, वो क्या कहता है, मुझे कुरूप बनाओ या अच्छा बनाओ, मुझे दोनों ही शरीर नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक संसार चाहिए, मुझे आध्यात्मिक शरीर चाहिए, मुझे आध्यात्मिक संसार में जाना है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक कार्य करना पड़ेगा, अकर्म करना पड़ेगा और अकर्म करके आध्यात्मिक संसार में जा सकते हैं। तो अकर्म कैसे करना पड़ेगा, 15.9 में भगवान बताते हैं, बोलते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। ये जो मन और इंद्रियां हैं ये भोग ढूंढ रहे हैं। जीव जो है विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक, जीभ, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित हैं और इस प्रकार एक विशिष्ट समुच्चय का वो भोग करता रहता है। तो कोई गंदी चीज खाता है, फालतू उल्टी सीधी चीजें खाता रहता है, कुछ भी खाता रहता है तो उसको सुअर का शरीर मिलता है। सुअर के शरीर में सुअर की मनोस्थिति ऐसी होती है, मन की स्थिति, कि उसको मल ही अच्छा लगता है, विष्ठा ही अच्छी लगती है उसको। उसके सामने अगर आप देसी घी का बना हुआ हलवा रख देंगे ना, बोलेगा ये क्या लेके आया, मुझे दूसरी चीज खानी है, वो मल का, मल के पीछे भागता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा शरीर मिलता है जिस शरीर के अनुसार वो उन भोगों को भोगने का प्रयास करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई लड़की विवाह करना चाहती है तो उसको मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर कराते हैं, जैसे इस्कॉन में भी मैरिज ब्यूरो है, तो कोई 16 माला जप करता है तो 16 माला वाली लड़की खोजी जाती है उसके लिए, लड़का है तो, कोई 2 माला ही जप करता है तो लड़की भी 2 माला वाली ही चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एक दोनों की आध्यात्मिक रुचि सेम होनी चाहिए या दोनों की भौतिक रुचि। जैसे मान लीजिए कोई माला जप नहीं करता, वो लड़की भी माला जप नहीं करती, अच्छा है ठीक है, लेकिन अगर कोई एक माला जप करता है, 16 माला कोई जप करता है और उसकी पत्नी वो जप नहीं करती, भक्त नहीं है, तो बड़ी परेशानी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको ऐसा शरीर दिया जाता है जिस प्रकार का हम भोग भोगना चाहते हैं उसके अनुसार ही शरीर दिया जाता है, जैसा हम भोग भोगना चाहते हैं वैसे। जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हैं, फिर भी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करते हुए वो अपने जीवन को परफेक्ट नहीं बना पाया, वो भगवान के धाम नहीं जा पाया, तो भी उसको एक नया शरीर मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा जहां से आप भक्ति कर सकते हैं। हाँ आपको सुविधा मिलेगी, शुरुआत से ही भक्ति करने की सुविधा मिलेगी। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा या फिर एक अमीर परिवार में जन्म मिलेगा जहां कुछ करने की जरूरत नहीं, आप भक्ति आराम से कर सकते हैं। हाँ तो ये विशेषता है। अब इस जगत की असमानताएं को देखते हैं। देखिए इतने सारे तरीके के बॉडीज इस संसार में हैं। हाँ कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई बहुत बल वाला है, कोई बहुत निर्बल है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है। बहुत सारी असमानताएं संसार में देखी जाती हैं। ये सोनम शर्मा है क्या? सोनम कपूर। एनीवे, कोई स्वस्थ है और कोई रोगी है। अभी भगवान आगे बताते हैं कि आत्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, 10 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर के श्लोक में। तो पहली चीज मैं बताना चाह रहा था यहां पे कि अगर कोई भगवान की कृपा ना होना तो कोई इंद्रिय सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग जो हैं वो ये नहीं देख सकते। अर्जुन सुनो, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषः। ये सच बात है, मूर्ख लोगों को पता ही नहीं रहता कि किस तरीके से जीव अपना शरीर त्यागता है। वो लोग पूरा मेटलिस्टिक दिमाग से सोचते हैं, आया था, जिया, मर गया। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे जीव शरीर त्यागता है, ना वो ये समझ सकते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन रह के कैसे जीव जो है इस शरीर का भोग भोगता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, जो भगवद गीता पढ़ता है, जो भगवद गीता सुनता है, जो भगवद गीता बोलता है, वो ये सब देख सकता है। वो जान सकता है कि किस तरीके से जीव इस शरीर में आया था और अभी इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को ज्ञान में स्थित होना चाहिए। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतंतो अप्यकृतात्मानो नयनं पश्यन्ति चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त जो योगी होते हैं वो ये सब देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करते हैं फिर भी वो जान भी नहीं पाते ये क्या हो रहा है, किस तरीके से आत्मा जो है शरीरों को चेंज कर रही है, किस तरीके से एक शरीर का भोग कर रही है, उनको समझ में ही नहीं आता ये सब। हाँ। तो अभी 12 नंबर श्लोक से लेके 15 नंबर श्लोक में आगे तो अर्जुन पूछता है, हे भगवान आप मुझे यह बताइए कि अगर वो कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि इन सब चीजों के बारे में, तो आप अपने बारे में बताने के लिए क्या करते हैं, कैसे आपके बारे में जाना नॉलेज मिलेगा। तो भगवान जो है यहां पे चार व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। 12 नंबर श्लोक में भगवान ब्रह्मांडीय व्यवस्था, 13 नंबर सांसारिक, 14 नंबर शारीरिक व्यवस्था और 15 नंबर श्लोक में आध्यात्मिक व्यवस्था बताते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चलिए इनको जानते हैं क्या है। 12 नंबर श्लोक, यदादित्यागतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते हैं ये तुम जो सूर्य देख रहे हो ना, ये सूर्य का तेज जो है मेरे से निकलता है, चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मेरे से ही निकलता है। भगवान कहते हैं मैं सूरज को प्रकाश देता हूं, मैं चंद्रमा को ऐसी शक्ति देता हूं जिसके द्वारा वो वनस्पतियों को पोषण देता है। जैसे मान लीजिए केवल दाल और चावल ही होता तो हम लोग केवल दाल चावल रोज खाते होते, नहीं, भगवान ने कई सारे मसाले भी दिए हुए हैं। हाँ मसाले के द्वारा आप कुछ कई चीजें बना सकते हैं, हल्दी है, हींग है, मिर्च है, न जाने क्या क्या है। हाँ उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आप जब उनको मिक्स करके बनाते हैं तो कई सारी वैरायटी बना सकते हैं। तो कभी कभी भगवान ये भी जानते हैं कि जब जीव खाएगा तो कभी कभी ज्यादा खा जाएगा या कुछ गलत सलत खा जाएगा तो उसका पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तो भगवान ने जड़ी बूटी की व्यवस्था की हुई है। आइंस्टीन नाम का जो महान वैज्ञानिक था वो बोलता था कि मुझे 100% श्योर है ये पक्की व्यवस्था से बनाया हुआ संसार है, और मैं उस व्यक्ति से सीखना चाहता हूं जिसने इस संसार को बनाया हुआ है, मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूं, उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं जिसने ये सब प्रिपेयर किया हुआ है। तो आइंस्टीन बोलता है, कहता है कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि ये सब अपने आप हुआ है वो मूर्ख है, साइंटिस्ट वास्तव में यही बात बोलते हैं, कई सारे साइंटिस्ट, ये सब अपने आप हो गया। तो कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि भोजन पचाने वाला भी मैं ही हूं। आगे के श्लोकों में 13 नंबर में बोलते हैं, गामा विश्च भूतानी धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन प्रदान करता हूं, जीवन रस प्रदान करता हूं। आपको पता है सूर्य के चारों ओर कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा करके साइंटिस्ट बोलते हैं। तो जो प्लूटो है, प्लूटो वो दो प्लेनेट के बीच में आता है, बार बार आता है बीच में, लेकिन कभी भी उसका टकराव नहीं होता किसी भी प्लेनेट से। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रॉपरली वहां पे उसको सेट किया गया है। माया मुग्ध जीव नहीं कृष्ण ज्ञान, माया के मुग्ध में, माया से मोहित जो जीव है उसको कृष्ण ज्ञान नहीं होता। इसीलिए अतः कृष्ण दैला वेद पुराण, इसीलिए भगवान कृष्ण क्या दिया है, वेद और पुराण दिए हुए हैं, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान जो है सूर्य के तेज हैं, आग के तेज वही हैं, और वही जो है सारे प्लेनेट जो है, जो सारे लोक हैं उनमें वो प्रवेश करते हैं, तभी वो जो लोक हैं वो अपनी जगह पे स्थित रहते हैं, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी वो एक दूसरे से भिड़ नहीं जाते। तो जो फूल उगते हैं सूरज की किरणों में, और जो मिठास फल में आती है, जो सब्जियों में जो उसका टेस्ट आता है, वो सब कहां से आ रहा है? वो चंद्रमा से आ रहा है। तो चंद्रमा और सूरज क्या है? भगवान के ही विस्तार है, भगवान से ही द्वारा प्रदत्त शक्तियों से वो आगे कार्य कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जीवन रस, वनस्पतियों को जीवन रस भी मैं चंद्रमा की सहायता से प्रदान करता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि भी मैं ही हूं। अभी हम लोग जो खाते हैं उसको पचाता कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं वैश्वानर बन के, और जो श्वास प्रश्वास है उसमें रहकर मैं चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं, जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, इसके द्वारा भगवान बोल रहे हैं मैं चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। ये चार प्रकार के अन्न क्या है इत्यादि अगर आपको पढ़ना है तो आप तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। 15.15 भगवान बताते हैं आध्यात्मिक रूप से क्या व्यवस्था मैंने बनाई है, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, हृदि सन्निविष्टो हृदय में अविष्ट हूं। और क्या होता है? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति होती, स्मृति मतलब याद आता है, ज्ञान भी मैं देता हूं, और अपोहनम, अपोहनम मतलब भुला भी मैं ही देता हूं। भुलाने वाला कौन है? भगवान बोलते हैं मैं ही हूं। तो भगवान जो है तीन प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं, परमात्मा रूप में भगवान जो है हमारे हृदयों में बैठे हुए हैं और तीन प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं। कैसे कैसे? स्मृति, ज्ञान और अपोहनम। अपोहनम मतलब भुला देना। तो जो भगवान को भुलाना चाहता है भगवान व्यवस्था करते हैं, तो उसको इस भौतिक संसार में उसको डाल देते हैं जिससे कि वो भगवान को भूल जाए। और कोई अगर भगवान की भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसको ज्ञान और स्मृति भी प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति में ऑलरेडी आगे बढ़े हुए हैं, जो चाह रहे हैं भगवान के लिए, प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान मुझे आप प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उसकी बुद्धि भी जीवों को भगवान ही देते हैं। हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था, चतुश्लोकी भगवत गीता में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोपियां देते, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है तो भगवान कहते हैं उसके हृदय में भी मैं वो ज्ञान रूपी दिया जला देता हूं, और अंधकार रूपी जो अंधकार है उसको मैं हटा देता हूं उसके हृदय से। तो इस प्रकार अर्जुन जो है यहां पे पूछते हैं कि एक बात और बताइए मुझे, ये जो वेद पढ़ते हैं लोग, इनके वेद पढ़ने का निष्कर्ष क्या होता है, सार क्या होता है? भगवान कहते हैं वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं जानने के योग्य हूं।
कोई वेदों को पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, अगर यह जान लेता है कि कृष्ण ही वेदों के द्वारा जानने के योग्य हैं, कृष्ण ही सार हैं, दैट्स एनफ, उसको और वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना जान लेना ही काफी है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सारे वेदों के सार हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और मैं जो हूं समस्त वेदों को जानने वाला हूं, क्योंकि मैं वेदांत का संकलन करता भी मैं ही हूं। परमेश्वर की पाचन में सहायता के बिना हम खाने का आनंद भी नहीं ले सकते। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं, उपस्थित हूं, मुझसे ही स्मृति मिलती है, ज्ञान मिलता है, विस्मृति भी मुझसे ही होती है। कल्पना करो कि एक सुबह जागने के बाद आपको याद ही नहीं रहे कि आप कौन हैं, तो भगवान ही हमको सोने के समय भुला देते हैं और जगने के समय सब कुछ याद दिला देते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए भगवान पर आश्रित हैं। भगवान कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने के योग्य हूं, मैं ही वेदांत का संकलन करता हूं व्यासदेव के रूप में, और समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। अभी कृष्ण वैदिक ज्ञान क्यों प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जीव को स्वयं की भलाई के लिए कृष्ण को समझना आवश्यक है, और जो वेद हैं वो लोगों को सही निर्देश देते हैं जिसके अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करें और भगवत धाम वापस लौट जाएं। वेदों को समझकर कोई जान सकता है ये तीन चीजें, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान से हमारा संबंध क्या है, वो वेदों को पढ़ के जान सकता है, और उस विधि से भगवान को कैसे जाना जा सकता है उस विधि को बोला जाता है अभिधेय, और प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भगवान की प्राप्ति। ये तीन ज्ञान जो है व्यक्ति को वेदों से होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अभी वेदों के सार को बताएंगे। इसेंस इन थ्री वर्सेस, तीन लोकों में भगवान ने सार प्रदान किया है, 16, 17, 18, इन तीन श्लोकों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इसी को मैं बोल रहा था, 13 से 18 अध्याय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, या फिर कहें कि जो परम रहस्य है वो भगवान ने 16, 17, 18 इन तीन श्लोकों में बताया है। भगवान कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके, एक क्षर होते हैं एक अक्षर होते हैं। क्षर मतलब जो च्युत होते हैं और अक्षर मतलब अच्युत होते हैं। भौतिक जगत में जो जीव हैं वो कैसे हैं, क्षर हैं, यानी च्युत हैं, अपने अपने जगह से वो गिर सकते हैं ऐसे। और जो आध्यात्मिक जगत में जो है वो कैसे हैं, अक्षर कहलाते हैं, यानी अच्युत कहलाते हैं। अभी ये भगवान ने बताया, उसके बाद अभी 17 नंबर श्लोक, उत्तम पुरुष त्वन्यः परमात्मे त्युदाहितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। अभी इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। अब देखिए क्षर और अक्षर इन दोनों से अलग है, ये कौन है, उत्तम पुरुष, ये श्रेष्ठ पुरुष है। कौन है वो, परमात्मा है। वो कौन है, साक्षात अविनाशी भगवान है। यो लोकत्रयमाविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है, और विभर्तव्य ईश्वरः, वो पालन भी करता है, ऐसा अविनाशी भगवान है वो। भगवान बोलते हैं मैं वो हूं। तो क्षर हो गया, अक्षर हो गया, क्षर मतलब जो इस भौतिक संसार में रहते हैं और अक्षर मतलब जो आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। दोनों जगत में जो लोग रहते हैं उसके अलावा परमात्मा जो है वो क्षर और अक्षर के परे है। अभी यहां पर भगवान ने उसका नाम लिया परमात्मा। अभी अगले श्लोक में भगवान और क्लियर करते हैं, यस्माक्षर यस्माक्षरमति तोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदेचा प्रतितः पुरुषोत्तमः। वो परमात्मा कोई और नहीं है, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, भगवान है, और वो मैं हूं। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में जाना जाता हूं। सब लोग मुझे परम पुरुष के रूप में जानते हैं। तो ये जो भगवान हैं, परमात्मा जो हैं, वो पूरे विश्व को उन्होंने क्या किया है, आवृत करके रखा हुआ है, सारे जीवों के अंदर परमात्मा है। अभी 18वें श्लोक में भगवान
भगवान के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। परमात्मा उनका एक पहलू है, लेकिन भगवान कैसे एक व्यक्ति हैं, वो बता रहे हैं मैं पुरुष हूं। परमात्मा कैसे वो व्यक्ति नहीं दिख रहे, वो सब जीवों में हैं, लेकिन एक व्यक्ति करके हैं, वो हमें 18वें श्लोक में पता चल रहा है। मैं क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर हूं। तो ऐसा नहीं कि मायावादी लोग जैसा बोलते हैं कि क्षर जो है, क्षर अवस्था में हम लोग जीव हैं, लेकिन जब हम अक्षर बन जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा गलत बोलते हैं वो लोग। पर कृष्ण जो है ये अपने को दोनों से ऊपर यहां पे बताते हैं, क्षर और अक्षर दोनों से मैं ऊपर हूं, इसलिए लोग और वेद जो है मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। दो प्रकार के जीव, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाते हैं, यानी उसका कभी विनाश नहीं। च्युत मतलब होता है अपने जगह से गिर जाना, अच्युत मतलब जो अपनी जगह से कभी भी गिरता नहीं है, अच्युत। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है, उनका पालन करता है। और भगवान कहते हैं कि चूंकि मैं दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं, सब लोग मुझे परम पुरुष के रूप में जानते हैं। अभी आगे 19 नंबर श्लोक और 20 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मुझे जानते हैं उनका क्या होता है। जो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। यानी अगर कृष्ण को जान लिया तो कुछ और विषय जानने लायक बचा ही नहीं, सब कुछ जान गया। अतएव हे भरत पुत्र अर्जुन, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जो जान जाता है कृष्ण के बारे में, वो क्या करता है, वो कृष्ण की भक्ति करने लगता है, कृष्ण की सेवा करने लगता है। सा सर्वविद भजति माम, भजति मतलब भजन करना, भक्ति करना, माम सर्व भावेन भारता, इसलिए वो मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। अभी भगवान अर्जुन को 20 नंबर श्लोक में बोलते हैं, कहते हैं हे अर्जुन सुनो, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनघ मतलब होता है पाप ना करने वाला, पाप रहित। हे अनघ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। वाव, जो कोई इसको समझता है उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। तो मैं सबका पूजनीय हूं, वो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा और इस ज्ञान को जानने वाला वो बुद्धिमान माना जाएगा, और उसके जो भी प्रयास वो करेगा वो सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के अध्याय में हम लोगों ने चार चीजों के बारे में चर्चा किया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा ये अध्याय। पहला एक नंबर श्लोक से लेकर 5 नंबर श्लोक तक होम और होटल, 6 नंबर श्लोक और 11 नंबर श्लोक में ऑन एंड ऑन ओवर एंड ओवर अगेन, और 12 नंबर से 15 नंबर मेंटेनर ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, उसके बारे में भगवान ने बताया। और फिर लास्ट के 3 श्लोकों में 16 17 18 में उन्होंने इसेंस बताया, 3 लोकों में सार बताया, और 19 20 में बताया कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है उसका क्या होता है। तो इस प्रकार से आज हमने 15वें अध्याय के बारे में सुना, और मुझे लगता है कि आप लोगों को आनंद आया होगा इसके बारे में सुन के। यह अध्याय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से भगवान अपने बारे में, खास करके भगवान एक व्यक्ति हैं उसके बारे में बताते हैं। भगवान आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार के बारे में बताते हैं कि हमें हमारे घर जाना है, होटल में नहीं रुकना। इस संसार कैसा, एक होटल के समान है, यहां से निकल के घर जब जाएंगे तो हम सुखी होंगे। इस प्रकार से भगवान यह अध्याय को यहां पे समाप्त करते हैं।